யரிதம் கிஞ்ச ஜகத் சர்வம் பிராண யஜதி நிஸ்ருதம் மகத் பயம் வஜ்ரமுத்யதம் ச ஏதத் விது ரம்ரிதாஸ்தே பவந்தி சம்பத்தம் வர்த்தமானம் ச க்ரிஹதே சக்ஷுராதினா. हम अपने इंद्रियों के द्वारा जिन पदार्थों को जान लेते हैं, जानने के साथ हमारे उसी प्रकार की मान्यताएं निर्मित होती जाती हैं। इंद्रियों के द्वारा पदार्थ मालूम पड़ते हैं और वो जैसे मालूम पड़ते हैं वैसे हमारी वासनाएं निर्मित हो जाती हैं और वासनाओं के अनुसार हम बाहर के पदार्थों को स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन उस स्वीकृति में हम कभी सोच नहीं पाते कि ये हमारी स्वीकृति यथार्थ है कि अयथार्थ है। वासना हमें पदार्थों को सत्य के रूप में दिखाती है। ये वासना का अज्ञान का प्रभाव है। बाहर की वस्तु हमें सत्य मालूम पड़ने लगती है, वासना के विषय की वस्तु हमें यथार्थ मालूम पड़ने लगती है। लेकिन ज्ञान के द्वारा जब वासना का क्षय हो जाता है तो हमारे दृष्टि में यथार्थता आ जाती है और हम पदार्थों के यथार्थ दर्शन करने लगते हैं। हमारे सामने जो आंख इस संसार को दिखाती हैं, ये आंख हमें यथार्थ रूप में नहीं दिखाती हैं, अयथार्थ रूप में दिखाती हैं। जैसे हमें दूर से चंद्रमा दिखाई देता है, बहुत छोटा मालूम पड़ता है, लेकिन वो छोटा थोड़ी है। सूर्य हमें आंख बहुत छोटा दिखाती है, लेकिन वो सूर्य छोटा नहीं, बहुत बड़ा है। लेकिन आंख पर आप विश्वास करोगे तो आंख तो यही कहेगी कि वो तो बहुत छोटा है। आंख तो आपको यही बोलेगी कि चंद्रमा बहुत छोटा है, जिसको आप अपने हाथ में ले सकते हो। लेकिन हम आंख पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। ये हमारी इंद्रियां हमको यही बताती हैं कि तुम शरीर हो, तुम इंद्रियां हो, तुम चित्त की वृत्तियां हो। लेकिन हम अपनी इंद्रियों पर भरोसा नहीं कर सकते, इसलिए इन पदार्थों को जानने के लिए एकमात्र हमारे सामने शास्त्र ही प्रमाण है। जब हम शास्त्र की दृष्टि से, शास्त्र की आंख से देखते हैं, प्रमाण वृत्ति से, तो उस समय हमें बाहर के पदार्थ यथार्थ मालूम पड़ते हैं। वासना की दृष्टि से वासना मूलक इंद्रियों की दृष्टि से जब हम दुनिया को देखते हैं तो दुनिया सत्य मालूम पड़ती है। लेकिन शास्त्र मूलक ज्ञान की दृष्टि से जब हम दुनिया को देखते हैं तो दुनिया भ्रम मूलक मालूम पड़ती है। इसलिए श्रुति ने कहा कि इसका जो मूल है अधिष्ठान ब्रह्म तत्व है और उसी ब्रह्म तत्व का विवर्त रूप है ये सारा संसार, और इसी को कहा गया है विवर्तोपादान। हमारे सामने दो प्रकार के उपादान होते हैं, एक परिणामी उपादान कारण और दूसरा विवर्त उपादान कारण। जैसे व्यवहार में हम देखते हैं परिणामी उपादान कारण, मिट्टी से घड़ा बना, कपास से कपड़ा बना, आटे से रोटी बनी, दूध से दही बना, ये परिणामी उपादान कारण है। माने दूध का दही परिणाम बन गया, दूध विकृत हो गया, विकार को प्राप्त हो गया, तो वो दही बना। और इसके मूल में क्रिया है, ये जो भी परिणाम होता है वो क्रिया सापेक्ष होता है। दूध में यदि क्रिया ना हो तो उसमें विक्रिया संभव नहीं है। कपास में यदि क्रिया ना हो तो उसका विकार कपड़ा बनना संभव नहीं है। मिट्टी में कोई क्रिया ना हो तो मिट्टी कभी घड़ा नहीं बन सकती, घड़ा बनना संभव ही नहीं है यदि मिट्टी में कोई क्रिया ना हो। कुम्हार उसमें क्रिया करता है, उस मिट्टी को बनाता है, मिट्टी के अंदर पानी डालता है, वो उसके बाद फिर उसका अगारा बनाता है, फिर क्रिया देकर उस चक्र को चलाकर क्रिया के द्वारा उसको आकार देता है, घड़े के आकार में उसको परिणत कर देता है। ये परिणामी उपादान कारण क्रिया सापेक्ष है और अनेकों कारण सापेक्ष हैं। केवल एक क्रिया नहीं, वहां अनेकों प्रकार के कारण हैं। वहां मिट्टी है, पानी है, चक्र है, उस चक्के को चलाने वाला दंड है, उसके आसपास के लोग हैं, हवा है, इसलिए वहां पर नौ कारण माने गए। ईशस तद्ज्ञान यत्नेच्छा कालो दृष्ट दिगे वच प्राग प्रतिबंध का भाव कारणा साधारण स्मृता। यहां तक कि वह ईश्वर का ज्ञान, ईश्वर की इच्छा, ईश्वर का प्रयत्न, देश काल, प्रतिबंध का भाव और प्राग भाव को भी कारण माना। ये नौ साधारण कारण माने और असाधारण कारण के अंतर्गत वहां मिट्टी है, पानी है, चक्र है, कुलाल है, कुलाल की पत्नी है, वो गधा भी तो है जिसने मिट्टी ढोया। यदि गधा ना हो तो मिट्टी का ढोना संभव नहीं, गधा ना हो तो घड़े का निर्माण भी संभव नहीं है। ये अनेकों प्रकार के कारण और कारणगत क्रिया, इसके द्वारा परिणामी उपादान कारण के द्वारा कार्य परिणत हो जाता है। और दूसरा जो कारण है वो विवृतोपादान, जो विवृतोपादान कारण है वो जैसे रज्जु में सर्प, शुक्ति में रजत, स्वप्न पदार्थ, ये परिणाम और विवर्त को समझना बहुत जरूरी है। समान स्वभाव, अन्यथा रूप परिणाम, विपरीत स्वभाव, अन्यथा रूप विवर्त, दो का समान स्वभाव हो और उसका जो रूप है ना वो अन्यथा हो, उसको परिणाम बोलते हैं। स्वभाव माने सत्ता, वेदांत में तीन प्रकार की सत्ता हुआ करती हैं, व्यावहारिक, प्रातिभाषिक और पारमार्थिक। ये बात तो आपको मालूम ही है, इस संसार की जो सत्ता है वो व्यावहारिक सत्ता है और जो भ्रममूलक पदार्थ हैं जैसे स्वप्न पदार्थ हैं, रज्जु में सर्प हैं, शुक्ति में रजत हैं, बहुत से जगह पर हमें भ्रांतियां हुआ करती हैं। ये भ्रांति मूलक जो पदार्थ हैं उसकी प्रातिभाषिक सत्ता है और ब्रह्म तत्व की, आत्म तत्व की पारमार्थिक सत्ता है। जो ईश्वर तत्व है, ब्रह्म तत्व है, वो न व्यावहारिक है और न प्रातिभाषिक है, वो पारमार्थिक सत्ता है। ये तीन सत्ताएं होती हैं। ऐसे यहां पर जैसे मिट्टी से घड़ा बना तो मिट्टी और घड़े में, कार्य और कारण में आप सत्ता के विषय में सोचेंगे तो दोनों की सत्ता एक है। जो मिट्टी की सत्ता है वही घड़े की सत्ता है। मिट्टी की सत्ता व्यवहारिक सत्ता है। आपको भरोसा न हो तो आप मिट्टी को छू के देख लेना, आपको मालूम पड़ेगा कि हां ये मिट्टी है। वो व्यवहारिक सत्ता है, उसमें क्रियाकारिता है। व्यवहारिक सत्ता का अर्थ है क्रियाकारिता। व्यवहारिक सत्ता का अर्थ है जो वो ब्रह्मज्ञान के बिना बाधित नहीं होती। व्यवहार काल में आपको सत्य मालूम पड़ती है, व्यवहार काल में आप जिसके द्वारा व्यवहार कर सकते हैं उसकी व्यवहारिक सत्ता है, मिट्टी की व्यवहारिक सत्ता है। और मिट्टी से जो घड़ा बना उसकी भी व्यवहारिक सत्ता है। मिट्टी से आपने घड़ा बना दिया तो घड़े की कौन सी सत्ता है? पारमार्थिक सत्ता तो संभव नहीं, क्योंकि फूटने वाला है। और उसकी प्रातिभासिक सत्ता भी संभव नहीं है, क्योंकि क्रियाकारिता है। आप घड़े से जल ला सकते हैं, घड़े से आप जल भर सकते हैं। इसलिए घड़े की जो सत्ता है वो व्यवहारिक सत्ता है। दोनों की सत्ता एक है, समान सत्ता, लेकिन अन्यथा रूप। दोनों की सत्ता तो समान है लेकिन जो स्वरूप है ना वो अलग है। दोनों का आकार अलग है, मिट्टी का आकार अलग है और घड़े का आकार अलग है। आपको पानी पीने के लिए घड़ा ही चाहिए, आप मिट्टी के द्वारा पानी नहीं पी सकते। आपको पहनने के लिए वस्त्र ही चाहिए, आप कपास से अपना अंग नहीं ढक सकते। आपको मट्ठा बनाने के लिए दही ही चाहिए, आपको दूध से मट्ठा नहीं बना सकते। आप कितना भी कोशिश करेंगे तो दूध से मट्ठा नहीं बना सकते। भले ही दूध और दही की एक सत्ता है, व्यवहारिक सत्ता है, लेकिन उसके आकार में, उसके गुणधर्म में, उसके प्रवृत्ति में, उसके विकृति में, उनके दोषों में, गुणों में महत अंतर है, महत अंतर है। आप दूध पियोगे तो आपको खटास नहीं मिलेगी, आपको खट्टा चाहिए तो आपको दही चाहिए। इसे डॉक्टर बोलेगा कि भैया आपको कफ नहीं बढ़ाना है तो दही मत खाओ, खांसी है तो बोले दही मत खाओ, लेकिन दूध पीने के लिए मना नहीं करेगा, बहुत ज्यादा खांसी ना हो तो। नहीं तो कई बार आदमी को दूध भी खांसी बना देता है। ये दोनों में समान सत्ता होने के बाद भी उसके स्वरूप में, गुणधर्म में अंतर है, और इसी को परिणाम बोलते हैं, इसी को परिणामी उपादान कारण बोलते हैं। जो मिट्टी है परिणामी उपादान कारण है, परिणाम के प्रति उपादान कारण है, और मिट्टी का परिणाम घड़ा है, दूध का परिणाम दही है। ये हमारे शास्त्र के प्रामाणिक उदाहरण है जिसका बहुत विचार किया गया। और जो विवर्त उपादान कारण है ना उसमें बिल्कुल अलग। ये दो चीजें आपको वेदांत में समझना बहुत अनिवार्य है। परम पूज्य महाराज श्रीणि बहुत विस्तार से इसका प्रतिपादन किया है कठोपनिषद के इन्हीं श्लोकों के प्रवचन में। परिणामी उपादान कारण में दोनों की सत्ताएं अलग हो और दोनों के स्वरूप भी अलग हो, उसको विवर्त बोलते हैं। जैसे आपने अभी दूध और दही में समझा, उसके बिल्कुल विपरीत हैं। रज्जु में सर्प, एक तरफ रज्जु है दूसरे तरफ सर्प है, आप दोनों में विचार कीजिए। बहुत ज्यादा अंधकार नहीं है, मंद अंधकार है। बहुत यदि अंधकार हो ना, आपको रज्जु का ज्ञान ही ना हो तो सर्प का भ्रम संभव नहीं है। रस्सी तो पड़ी है लेकिन बहुत गहरे अंधेरे में है, आपको रस्सी मालूम ही ना पड़े तो रस्सी में सर्प की भ्रांति नहीं होगी, नहीं होगी। आपके घर में पाइप पड़ा है, बहुत गहरे अंधेरे में पड़ा है, गहरे अंधेरे में, आपको दिखाई नहीं दिया। आप कितना भी कोशिश करेंगे तो उसमें भ्रांति पैदा होगी क्या? नहीं होगी। इसलिए मंद अंधकार चाहिए। मंद अंधकार में अधिष्ठान का सर्वतो रूपेण बोध ना हो, आपको पूर्ण रूप से अधिष्ठान का बोध ना हो, पता न चले, और पूर्ण रूप से उसका अज्ञान भी ना हो, आपको रस्सी बिल्कुल ही मालूम ही नहीं पड़ रही है वो कितनी लंबी है, कितनी चौड़ी है, मोटी है, क्या है। अज्ञात के गर्त में यदि वो रस्सी पड़ी हो तो उसका बोध संभव नहीं है, और बोध नहीं है तो वहां भ्रांति भी संभव नहीं है। और पूर्ण प्रकाश विशेष रूप से आपको बोध हो गया, ये रस्सी है इतनी लंबी है, इतनी चौड़ी है, आपको यथा तत्ते न बोध हो गया, अब वहां पर भी भ्रांति संभव नहीं है। अधिष्ठान का पूर्ण रूप से बोध और पूर्ण रूप से अबोध, ये दोनों भ्रांति के विरोधी हैं। एक भ्रांति को मिटा देता है और दूसरा भ्रांति को पैदा ही नहीं होने देता है। अब वो पूर्ण बोध हो गया तो भ्रांति को मिटा देगा, वो भ्रांति उस समय नहीं रहेगी। और यदि रस्सी का पूर्ण अबोध है तो वो भ्रांति को पैदा ही नहीं करने देगा। ये पूर्ण अबोध और पूर्ण बोध दोनों भ्रांति के विरोधी हैं। भ्रांति के साधक हैं मंद अंधकार हैं और सामान्य बोध है, और वो सामान्य बोध वो विपरीत बोध के प्रति, भ्रांति के प्रति कारण बन जाते हैं। मंद अंधकार में रस्सी पड़ी है, आपको ज्ञान हुआ सामान्य ज्ञान, ओ कुछ पड़ा है कुछ, और वो जो कुछ है ना ये बहुत खतरनाक है। आदमी ज्ञानी है तो बहुत खुश है, और अज्ञानी है वो भी बहुत खुश है। जो ज्ञान और अज्ञान के बीच की जो कड़ी है ना वो बहुत खतरनाक है। विदुर जी महाराज जी ने भागवत में एक बहुत सुंदर बात बोली, उन्होंने कहा दुनिया में जो सबसे बड़ा ज्ञानी है बहुत खुश है, और जो बहुत अज्ञान में पड़ा है, बहुत अज्ञान में, गहरे अज्ञान में पड़ा है, बोले वो भी बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। इसलिए कबीर जी ने तो चुटकी ले ली, कबीर जी ने कहा खाए और सोए। अच्छा अरे बोले वो जो अज्ञानी है ना, अरे वो तो बहुत मस्त है। कबीर जी ने कहा कि वो खाता है और सोते, नो कोई टेंशन नहीं है वहां। और जो परम ज्ञानी है वो भी खाए और वो भी मस्त है, उसको भी चिंता नहीं है। जो मस्त फकीर है उनको क्या, अब सुखदेव जी महाराज को क्या चिंता, वो तो मस्त है। लेकिन जो बीच वाली जो कोटी है ना, बीच वाली कोटी जो न पूरे ज्ञान में है और न पूरे अज्ञान में, वो बीच वाली जो कोटी है वो बहुत खतरनाक है, न खाए और न सोए। वहां न खाना है ढंग से और न वहां सोना है। इसलिए विदुर जी महाराज ने कहा कि ये दो कोटियां बहुत उत्तम है, उत्तम है। और जो मैं हूं ना वो बीच वाली कोटी में हूं, ऐसे बोला बीच वाली कोटी। इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि मैं ऊपर वाली कोटी में प्रवेश करूं। ये अज्ञान को, भ्रांति को पैदा करने वाली कोटी है। एक कुछ, ये जो कुछ का जो बोध है ना, कुछ का बोध भ्रांति को पैदा करते हैं। पूरा ज्ञान नहीं है, पूरा अज्ञान भी नहीं है, और वो कुछ का बोध है, और वो कुछ का जो बोध है वो कुछ पैदा कर देता है। वो कुछ का बोध कुछ को पैदा कर देता है, और उसी का नाम भ्रांति है। वो रस्सी पड़ी है मंद अंधकार में, कुछ, ओहो कुछ है, कुछ है, और वो कुछ का जो बोध है चट से वो लंबी लंबी मालूम पड़ती है ना, लंबी लंबी थोड़ी कुछ 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 लंबी मालूम पड़े, कुछ कुछ। और वो जो कुछ कुछ लंबी मालूम पड़े वो कुछ कुछ जो है ना वो सांप में बदल जाती भावना, और आदमी सोचने ओहो सांप, और एक बार भ्रांति हो जाती है तो वो फिर आपको तो मालूम है आदमी एकदम उछल पड़ता है। वो सांप देख लेता है तो आदमी उछल पड़ता है, होने से आदमी प्रभावित नहीं है। आदमी वस्तु के होने और वस्तु के नहीं होने से दुखी नहीं है। वस्तु के होने और नहीं होने से आदमी परेशान नहीं है, होने और नहीं होने के बोध से आदमी परेशान है, समझ से आदमी परेशान है। वहां पर सांप है कि नहीं है, जैसे आपने सांप देखा उछल पड़े, और केवल उछल नहीं पड़े भी, आप उछल पड़े बोलते कि नहीं, उछल पड़े का मतलब क्या, उछले भी और गिर भी पड़े, घुटने भी टूटे, सिर भी फूटा, बहुत मुश्किल से भागे, चिल्लाने लगे, लंबी लंबी श्वास लेने लगे, और हो सकता है कि कमजोर आदमी हो तो। हाँ भाई, अटक आ जाए, इतना इतना भय पैदा हो गया, इतना भय पैदा हो, उछल पड़े। अभी हम लोग नवरात्रि में नर्मदा के किनारे अनुष्ठान कर रहे थे, तो मछलियों को दूध पिला, ऐसे दूध माँ को, नर्मदा जी को दूध चढ़ा रहे थे, तो मछलियों को दूध बहुत अच्छा लगा, वो दूध पीने के लिए आए, वो बड़ी बड़ी मछली हमारे यजमान के साथ, और वो जैसी मछली आई और पैर को छुआ उसने, ओ उछल पड़े वो उछल पड़े, वो रुचि सोया वाले थे वो। अरे मैंने कहा कुछ नहीं कुछ नहीं, मैं हंस दिया। मैंने कहा कुछ नहीं, अरे पता नहीं क्या है वो, अब कुछ नहीं, मैंने कहा मछली है, छोटी सी मछली है, ज्यादा नहीं, और उनके पैर थोड़े गोरे गोरे थे, मछली को भ्रम हो गया होगा, कुछ खाने की अच्छी चीज है, और पता है हमारे पास नहीं आती, उन्हीं के पास जाती है, और जैसे जाकर के वो छू देती होगी, ज्यादा नहीं, और वो भूल जाते थे फिर, वो जैसे मछली थोड़ा छू वो उछल पड़ते हो, और वो हाथ में दूध का लोटा इधर उधर हो जाता है, उछले भी और पड़े भी। और आदमी यदि कमजोर हो ना, सांप देखा ओहो उछल पड़े और गिर पड़े, हो सकता है कि नमो नमो भी हो जाए। तो वहां इतना जो प्रभाव पड़ा, उछल पड़े, वो होने से या नहीं होने से, या होने नहीं होने के बोध से, हमारे जीवन को प्रभावित जो चीजें करती हैं, वो होने या नहीं होने से नहीं, होने और नहीं होने के भ्रांति से, होने या नहीं होने के समझ से, हमारे जीवन को प्रभावित वस्तुएं नहीं करती हैं, वस्तुओं का अस्तित्व नहीं करता है, वो अस्तित्व का बोध करता है। इसलिए हमारी जो पहुंच है ना, वस्तु तक नहीं है, उसके वस्तु के अस्तित्व के बोध तक है। आप कितना भी कोशिश करें, वस्तु तक आपकी पहुंच नहीं है। आपके पास जो भी चीजें हैं, वो सारी चीजें ज्ञानात्मक हैं, और उसी को आप बोलते हैं, आप समझ कोई है ऐसा बोलते हैं। आज आपके पास 100 रुपया है, ये क्या है, ये ज्ञानात्मक है कि वस्तुआत्मक है? आपको केवल मालूम है, और वो मालूम होना उतना निकाल दे तो आपके पास बहुत बड़ा घर है, ये घर है, ये आपके अंदर प्रतीति है, बोध है, और वो उतना बोध यदि हटा दे तो आप मानेंगे? बस उतनी प्रतीति, आपके दिमाग से इतनी प्रतीति निकाल दे कि स्वामी प्रणवानंद यहां है, और आपको उस समय आकर किसी ने पूछा कि प्रेमपुरी में स्वामी प्रणवानंद हैं, तो आप क्या बोलोगे? तो हमारे जीवन में जो भी चीजें मालूम पड़ रही हैं, वही मालूम पड़ रही, वही है। ये सारी चीजें हमारे जीवन को प्रभावित करती हैं, वो बोधात्मक हैं, वो बोध भ्रांति रूप हो या यथार्थ हो, उसे कोई अर्थ नहीं है। केवल आपके जीवन को प्रभावित करने वाली चीज वो बोध है। आपको मालूम पड़ा ये रज्जु में सर्प है, और मालूम पड़ते ही आप प्रभावित हो गए, वह नहीं है। और उस समय आके कोई आपको बुला दे, बोल दे भैया क्या हुआ, आप बोलेंगे सांप, और हो सकता बुखार भी आ गए, बुखार आ गया है, डॉक्टर को बुलाओ। आप परेशान होंगे, आप भी परेशान हो गए, क्योंकि आप भी भ्रांति में चले जाएंगे, आपको भी लगेगा वो सांप देखा है, इन्होंने सांप देखा है। उस समय आपको ये नहीं लगेगा कि इनको भ्रांति हो रही है। तब तक दोनों की भ्रांति मिटने का उपाय नहीं जब तक वहां पूर्ण प्रकाश ना आए। अच्छा, आपने फिर बैटरी लाई, भाग दौड़ करके आपने देखा, सांप नहीं मिला, तो आप क्या सोचेंगे? आप ये सोचेंगे वो भाग गया है, आप यही सोचेंगे वो भाग गया, अरे यही देखा था मैंने, वो भाग गया, चला गया, इधर उधर चला गया वो। और आपके मन में ये भी भ्रांति पैदा होगी कि फिर आएगा, और जैसे अंधेरा होगा ना तो आप डरेंगे, ओहो यहां तो सांप देखा था मैंने, ओहो यहां सांप देखा था, वो आएगा, जरूर आएगा, संभावना है, आने की संभावना है। और वो आगे की सारी प्रक्रिया एक भ्रांति अनेकों भ्रांतियों को पैदा करती है, एक भ्रांति अनेकों लोगों के मन में भ्रांतियां पैदा करती हैं, एक झूठ हजारों लोगों के अंदर फैलता है और हजारों झूठों में बदल जाता है। लेकिन उसी समय अपने टार्च भी आप समझदार थे, उसके लिए भी समझदारी की जरूरत है, इसके लिए भी हिम्मत की जरूरत है। आपको रस्सी में भ्रांति भी हिसाब की हो सकता है कि आप दरवाजा बंद करके अंदर ही रहे, बाहर ही ना आए, टार्च लेके बाहर आएंगे, उसके लिए बड़ी हिम्मत चाहिए, हाथ में डंडा लेंगे, टार्च लेंगे, अब ढूंढेंगे, और ढूंढने के बाद आपको मालूम पड़ा हो ये तो रस्सी। और जैसे आपको मालूम पड़ा वैसे आप बहुत प्रसन्न हो जाओ, हो खुश हो गया। पहले भय, भ्रांति भय को पैदा कर रही थी, भ्रांति पलायन को पैदा कर रही थी, भ्रांति विषाद को पैदा कर रही थी। और जैसे आपने प्रकाश जलाया, पूर्ण बोध हुआ, रस्सी का पूर्ण बोध हुआ, और जैसे पूर्ण बोध हुआ भ्रांति टूटी, और भ्रांति टूटने के साथ भ्रांति जन्य शोक, भ्रांति जन्य भय, भ्रांति जन्य दुख सारा समाप्त हो गया, और आप प्रसन्नता में चले गए, आप प्रसन्न हो गए। ये प्रसन्नता भी बोधजन्य है, ये प्रसन्नता ज्ञानजन्य है। और वो पहला भय, विषाद, दुख वो भ्रांतिजन्य था, इसलिए सामान्य बोध, अधिष्ठान का सामान्य बोध कुछ है, ये भ्रांति को पैदा कर देता है। और जो विशेष बोध हो गया, हो ये तो रस्सी है, अधिष्ठान का बोध हो गया, और अधिष्ठान के बोध ही साथ ही आपकी भ्रांति टूट जाती है। अब आप दोनों में विचार करो, एक अधिष्ठान तत्व है, एक अधिष्ठान तत्व जिसके अज्ञान से भ्रांति पैदा होती है, जिसके ज्ञान से भ्रांति मिट जाती है, उसी को अधिष्ठान बोलते हैं। जिसके होने से कार्य हो और जिसके नहीं होने से कार्य न हो उसको कारण कहा जाता है। जिसके ज्ञान से, जिसके सामान्य ज्ञान से भ्रांति पैदा हो और जिसके विशेष ज्ञान से भ्रांति मिट जाए उसी को अधिष्ठान कहते हैं। तो आपकी जो रस्सी है ना वो अधिष्ठान है, जिसके सामान्य ज्ञान से ये कुछ है, ये सामान्य ज्ञान से भ्रांति पैदा हो गई, और वो भ्रांति भी ऐसे पैदा नहीं होती है, केवल सामान्य ज्ञान से भ्रांति पैदा नहीं होती है, भ्रांति पैदा होने के लिए दृष्टा के अंदर, प्रमाता के अंदर भय का होना बहुत जरूरी है, या उसके अंदर प्रलोभन का होना बहुत जरूरी है। प्रलोभन भी भ्रांति पैदा कर देती है और भय भी भ्रांति पैदा कर देता है। जैसे आपने रस्सी को देखा सामान्य रूप से, लेकिन तो आपके मन में भय नहीं, सर्प के प्रति भय ही नहीं है, तो आपको भ्रांति होगी कि नहीं? बहुत मुश्किल है, भय ना हो तो भ्रांति का होना बहुत मुश्किल है। लेकिन आप बाजीगर हैं, आप सांप पकड़ने वाले हैं, अब सांप पकड़ने वाला आदमी होगा ना तो उसको भ्रम हो जाएगा, वो प्रलोभन है, वहां सांप पकड़ने वाला है, वो ढूंढ रहा है, सांप चाहिए उसको, और जैसे छोटी मोटी रस्सी उसने देखी अंधेरा है छोटा मोटा और देखते उसको भ्रांति हो जाएगा, वो सांप तो नहीं, प्रसन्न हो जाएगा वो सांप को देखे भागेगा नहीं, वो प्रसन्न होगा। वो भय और प्रलोभन जब सामान्य ज्ञान के साथ जुड़ जाते हैं वो भ्रांति पैदा कर देते हैं। इसलिए वासना हमारी भ्रांति के प्रति कारण है। बाहर की परिस्थितियों के साथ हमारी वासना जब जुड़ जाती है तो भ्रांति पैदा होना शुरू हो जाती है। आप किसी व्यक्ति को देख लेते हैं और उस व्यक्ति के सामान्य बोध को जब आपके अंदर की दुर्भावनाएं जो जुड़ जाती हैं तो एक इस व्यक्ति में भ्रांतियां पैदा कर देती हैं। हम बहुत सारे अनुभव अपने जीवन में करते हैं, हमारे राग द्वेष जुड़ जाते हैं और वहां व्यक्तियों में भ्रांतियां पैदा कर देते हैं। ये अधिष्ठान है, भ्रांति अधिष्ठान मूलक होती है। यदि अधिष्ठान न हो तो भ्रांति का होना संभव नहीं है। यदि अधिष्ठान ना हो तो भ्रांति पैदा होना ही संभव नहीं है। इसलिए भ्रांति को पैदा होने के लिए अधिष्ठान चाहिए। और यदि आपको भ्रांति हुई इसका मतलब वहां अधिष्ठान है। आपको सर्प दिखाई दे रहा है इसका मतलब है वहां पर अधिष्ठान है, वहां रस्सी है, वहां कोई ना कोई चीज है। वहां कोई ना कोई चीज ना हो तो आपको दिखाई देना संभव ही नहीं है। आपको चांदी मालूम पड़ी, आप पहुंच गए गंगा के किनारे, बालू की रेत फैली हुई है और उस बालू की रेत में आपको भ्रांति हो गई, चांदी की भ्रांति हो गई। आप वहां जाओगे तो आपको कुछ ना कुछ मिलेगा जरूर। कई बार गिरीश जी आपको आपने देखा होगा इतना सा बालू का कण होता, इतना सा बालू का कण और वो ऐसा चमकता जैसे इतना हो। आप वहां जाके ढूंढोगे तो वो इतना सा कण है, वो छोटी सी कोई कणिका होगी और वो कणिका दूर से प्रकाश की किरणों के माध्यम जो ऐसी मालूम पड़ती है। जरूर है, वो अधिष्ठान है। बिना अधिष्ठान भ्रांति का होना संभव नहीं है। एक अधिष्ठान है और दूसरा अध्यस्त रस्सी अधिष्ठान हो गई और उस रस्सी में जो प्रतीयमान सर्प है वो भ्रांति है, वो अध्यस्त है, वो भ्रम है। और इन दोनों की सत्ताओं का आप विचार करते हैं तो अधिष्ठान की सत्ता व्यावहारिक सत्ता है। अधिष्ठान की सत्ता यहां पर रस्सी की सत्ता व्यावहारिक सत्ता है, क्योंकि आपने जब प्रकाश लाया और देखा तो आपको मालूम पड़ा हो ये तो रस्सी है, तो आप उसको हाथ में ले सकते कि नहीं? ले सकते हैं। आपने हाथ में लिया और हाथ में लेने के बाद आपको मालूम पड़ा ये तो रस्सी है, और वो ये भी मालूम पड़ेगी कितनी मोटी है, कितनी लंबी है, सब कुछ मालूम पड़ा, उसका आप उपयोग भी कर लेंगे। उसकी सत्ता व्यावहारिक सत्ता है। और जो सर्प है ना, सर्प की सत्ता प्रातिभाषिक सत्ता है। और प्रातिभाषिक सत्ता का अर्थ होता है केवल प्रतीति मात्र सत्ता। देखो इसी को मिथ्यात्व बोलते हैं, इसी को मिथ्यात्व, जो प्रतीति मात्र है उसका जो होना है वो अस्तित्वगत नहीं है, उसका होना केवल दृष्टिगत है। सर्प का होना अस्तित्वगत धर्म नहीं है, रस्सी अस्तित्वगत है। और आप रस्सी को उठा भी लेंगे, दूसरे को दिखा भी देंगे, जो अस्तित्वगत वस्तु होती है वो अनेकों दृष्टि का विषय होती है, और जो केवल प्रतीतिगत वस्तु होती है, प्रतीति मात्र वस्तु होती है, प्रातिभाषिक सत्ता मात्र वस्तु होती है, वो केवल दृष्टा के दृष्टि का विषय होती है, वो दूसरे दृष्टा के दृष्टि का विषय नहीं होती है। इन दोनों में अंतर समझ लेना चाहिए। वहां रस्सी पड़ी है तो वो रस्सी आपको भी मालूम पड़ेगी और मेरे को भी मालूम पड़ेगी। हजारों लोग वहां ले आए तो भी हजारों लोग उसको देखेंगे और वो अनुभव करेंगे तो रस्सी है। वहां कोई ये नहीं बोलेगा ये सांप है, बोलेगा नहीं बोलेगा, वो हजारों लोगों की दृष्टि का विषय, वो व्यावहारिक सत्ता है। लेकिन वो जो सर्प है वो कितने लोगों की दृष्टि का विषय होगा? बस बस, जो दृष्टा है ना उसी के दृष्टि का विषय होगा। हो सकता है एक साथ दो लोगों को भ्रम हो जाए, हो सकता है एक साथ सौ लोगों को भ्रम हो सकता है। सौ लोग ग्रुप में जा रहे थे और अंधेरे में रास्ते में रस्सी पड़ी थी और सब लोगों को ओ वो तो साफ भागे, सौ लोग भागे। लेकिन जब आप प्रकाश ले आएंगे और भी लोग वहां पर पहुंचेंगे तो वो साथ उनके दृष्टि का विषय होगा कि नहीं? अब वहां उसके दृष्टि का विषय नहीं होगा क्योंकि प्रकाश ले आए, देख लिया, मालूम पड़ा। अब वो सांप जो है ना केवल भ्रम वाले व्यक्ति के दृष्टि का विषय बना, जिसको भ्रम नहीं है उसके दृष्टि का विषय वो नहीं बना, माने केवल वो दृष्टि का विषय है। वो उसका दृष्टि का विषय होना ही उसका अस्तित्व है, वो दिखाई दिया उतना ही उसका अस्तित्व। आप सो रहे थे, चलो आपको हम स्वप्न में ले जाते हैं, आप सो रहे थे और सोते समय आपको बहुत डर लग गया, लगता है कि नहीं? हाँ हाँ, सोते समय आदमी को, बहुत बड़े बड़े आदमी को भी डर लगता है, जो बहुत बहादुर भी होता है उसको भी सपने में डर लगता है। एक बार हम लोग पंजाब में थे, वो चौरासी के आसपास की बात है, बहुत बड़ा आतंकवाद खड़ा था उस समय, वहां 87 ऐसा कुछ समय था, वो पंजाब में बहुत बड़ा आतंकवाद था। वो कोई वहां जाना पसंद नहीं करते थे लोग, वहां बसों से ट्रेनों से उतारकर 50-50 लोगों को मार दिया था आतंकवादी। एक गंगा नंद जी महाराज नाम के महात्मा थे और हम सफेद कपड़े में थे, बनारस में पढ़ते थे। हमने कहा चलो पंजाब, तो महात्माओं ने कहा अरे पंजाब में क्या करने के लिए जाओगे, मरने के लिए, वहां तो आतंकवाद। हमने कहा चलो क्या है साधु महात्मा, अरे बोले वहां हिन्दू रहते ही है और वो आतंकवादी सबको थोड़ी मारते हैं, हम तो साधु महात्मा, चलो चलो। और हम संगरूर जिले में, एक कोई मेलाराम भगत था, अपने हिंदू धर्म में बड़े अच्छे अच्छे लोग हैं, बहुत सद गृहस्थों में बड़े बड़े सुंदर लोग। कल हमारे गिरीश जी ने बहुत अच्छा प्रवचन किया, बहुत अच्छा आत्मविश्वास के साथ बहुत अच्छी बातें बोली, सबको अच्छा लगा। और बहुत धर्मनिष्ठ, कर्मनिष्ठ, योगनिष्ठ, बहुत अच्छे अच्छे लोग हमारे समाज में हैं। मेलाराम भगत तूने वहां कुटिया बना रखी थी गांव के बाहर, और उस कुटिया में सारी व्यवस्थाएं थी, रहने खाने पीने भोज सब कुछ था उसमें। जब हम लोग गए, कोई तो महात्मा तो रहता, एक महात्मा अखंडानंद जी महाराज जी के शिष्य थे, बाद में मेरे को मालूम पड़ा वो रहते थे, नाम था अभयानंद सरस्वती जी महाराज। वो मोटा ताजा शरीर, शायद वो हरियाणा का शरीर रहा होगा, वो उसमें रहते थे कुटिया में, सुरक्षित कुटिया थी वो। और बाकी एक हॉल था, उस हॉल में आसन लगाना पड़ता था। हम लोग दोनों गए आसन लगाए, अरे बोले तुम कैसे आए भाई, यहां तो कोई आता ही नहीं, आ जाता है बोले रात में भाग जाता है, तुम कैसे आए ब्रह्मचारी, बड़े खुश हो गए वो। उस समय मैं अखंडानंद आश्रम से नहीं जुड़ा था, मैं बनारस में करता था, बड़े प्रसन्न हुए, बातचीत होती रही वहां के आतंकवाद ये वो सारी। और मैंने कहा आप क्या कहा, अरे बोले मैं बहुत बहादुर हूं, बोले मैं तो बोले कितने भी आतंकवादी आए तो गोली झेल लूंगा मैं, बहुत मैं हम भी खुश हो गए। मैंने कहा कि बड़ा बहादुर आदमी तभी यहां रह रहे हैं, लेकिन जैसे रात हो जाती ना तो फिर हमारी हालत खराब हो जाती थी। अब हॉल में दरवाजा भी नहीं था और छोटी छोटी दीवारें, हमको डर लगता था, रात में नींद ही ना आए, थोड़ा सा चूहा भी खुश हो जाए तो जग जाते थे, बैठ जाते थे, सांस रुकने लगती थी हम लोगों की, महीनों रहे। हमने कहा चलो रहना है तो रहना है। एक दिन अचानक आंख खुली और बहुत भयंकर आवाजें आ रही, भयंकर आवाजें, और वो ऐसा लग रहा था कि जैसे कि मानो कोई किसी की छाती पर बैठ के काट रहा हो, ऐसी दर्दनाक आवाजें। हम घबरा गए, मैंने स्वामी जी को जगाया, गंगानंद जी को, मैंने कहा जगिए जगिए, मैंने कहा कुछ गड़बड़ है, चलो भागो यहां से, लगता है कि कुछ है, स्वामी जी को मार रहे हैं कोई लोग मार रहे हैं स्वामी जी को। फिर भी मैं हिम्मत किया, मैंने सोचा कि ऐसे भागना उचित नहीं है। अंधेरे में, थोड़ा सा अंधेरे से होते हुए स्वामी जी के कमरे के तरफ तो जाके देख तो नहीं, भागना तो उचित नहीं है। फिर थोड़ा अंधेरे से होते 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 मैं स्वामी जी के कमरे के पीछे चला गया अंधेरे में, और पीछे जाकर के धीरे से मैंने खिड़की से देखा तो स्वामी जी सो रहे थे, और सोते समय भयंकर रो रहे थे, वो भयंकर रो रहे थे, जैसा कि मानो कोई काट रहा हो ऐसे। एक बार तो मेरे को भी लगा, अरे तो भयंकर रो रहे हैं और दरवाजा बंद है, ये स्वप्न देख रहे हैं। फिर मैंने जगा दिया, स्वामी जी स्वामी जी स्वामी जी, ओ बोले नमो नारायण नमो नारायण नमो नारायण। मैंने कहा ठीक है सब कुछ ठीक है? अरे बोले ठीक है ब्रह्मचारी ठीक है, बोले ठीक है। फिर दूसरे दिन मैंने चाय पिए, हम उसके बाद मैंने पूछा स्वामी जी रात में क्या हुआ था? अरे बोले कुछ नहीं कुछ नहीं। तो मैंने कहा कि रात में कोई आतंकवादी वगैरह आए थे क्या? अरे बोले क्या हमारा क्या बिगाड़ सकते हैं बोले आतंकवादी? अरे बोले हम तो बंदूक छीन लेंगे गोली छीन लेंगे। मैंने कहा झूठ मत बोलिए, रात में आपने स्वप्न में क्या देखा? अरे बोले ब्रह्मचारी बोले हमको बदनाम मत करो बोले। मैंने कहा फिर भी आप बताओ, बदनाम नहीं करेंगे दूसरे लोगों को नहीं बताएंगे, फिर भी बताइए। अरे बोले स्वप्न में आतंकवादी मेरे छाती पर आके बैठे थे और वो हमको छुरे से काट रहे थे। अरे बोले इतने भयभीत हो गए बोले, बहुत रोया बोले बहुत रोया, ऐसा लगा मार डालेंगे, और आपने आके जगा दिया हमको बचा दिया बोले। आप कितने भी बड़े क्यों ना हो, लेकिन बहुत बार स्वप्नों में हम बड़ी विचित्र सी चीजें देखते हैं। अनेकों जन्मों के संस्कार हैं और उन संस्कारों में आप अनेकों प्रकार के स्वप्न देखते हैं। और महात्मा ने क्या देखा? मेरे को काट रहे हैं हा? और जैसे मैंने जगा दिया तो उनका काटना बंद हो गया, हमने बचा दिया, नहीं तो कट जाते। महात्मा जी ने बोला कि आपने मेरे को बचा लिया, और नहीं बचाता आज यदि नहीं बचाता तो आप स्वप्न में थे ना, स्वप्न में थे तो आपको ऐसा लग रहा था कि मेरे को काट डालेगा और सचमुच काट डालता हूं स्वप्न में। यदि मैं नहीं जाता तो स्वप्न का जो अगला जो एपिसोड था वो कटने का ही था ना वो। और मान लो काट भी डाले गए होते स्वप्न में और उसके बाद वो अपने आप जग जाते तो वो क्या फील करते, वो क्या अनुभव करते कि मैं कटा हूं? अरे यदि सचमुच कटे होते तो जगते ही नहीं। यदि वो सचमुच कट गए होते स्वप्न में तो वो जगते ही नहीं, और उनका जगना ही सिद्ध करता है कि वो स्वप्न था, वो जग गए और वो अनुभव कर रहे थे कि मैं बच गया, ये बच गया, ये सिद्ध करता है कि वो स्वप्न था, वो देख रहे थे वो स्वप्न की चीजें थी। ये दो सत्ताएं हो गई, यहां दो सत्ताएं हो गई। एक प्रातिभाषिक सत्ता, वो जब देख रहे थे कि मेरे को कोई मार रहा है, अच्छा उनको सचमुच कोई मार रहा था कि वो केवल अनुभव कर रहे थे मार रहा था? वहां केवल अनुभव कर रहे थे, वहां मारने की क्रिया नहीं थी, केवल अनुभव कर रहे थे, वहां केवल मालूम पड़ रहा था। मालूम होना ही स्वप्न है, स्वप्न और कुछ नहीं, मालूम होने का ही नाम स्वप्न है। इसलिए शास्त्र ने कहा कि दृष्टा के दृष्टि के अलावा भ्रांति के पदार्थों का कोई अस्तित्व नहीं होता है, दृष्टि मात्र अस्तित्व होता है, वहां दृष्टि मात्र सत्ता है। और इसी को बोला गया शास्त्र ने दृष्टि सृष्टिवाद। आप सुनते होंगे इस शब्द को कभी, दृष्टि सृष्टिवाद, माने दृष्टि ही सृष्टि है, वहां दृष्टि के अलावा कोई सृष्टि नहीं है, वहां देखने के अलावा कोई वस्तु नहीं है। स्वप्न में आप केवल देख रहे थे, वहां देख रहे थे इतना ही स्वप्न के पदार्थों का अस्तित्व था, उसके अलावा स्वप्न के पदार्थों का कोई अस्तित्व नहीं था। ये प्रातिभाषिक सत्य, ये सर्प पदार्थ जो रज्जु में सर्प दिखाई देता है उसकी सत्ता जो है वो प्रातिभाषिक सत्ता है, प्रतिति मात्र सत्ताकत्व, प्रातिभाषिकत्व, ये प्रातिभाषिक सत्ता का लक्षण है, प्रतिति मात्र सत्ताकत्व। केवल प्रतिति मात्र जिसकी सत्ता हो वही प्रातिभाषिक है। इसलिए शुक्ति में जो रजत है वो प्रातिभाषिक सत्ता है, रज्जु में जो सर्प है वो प्रातिभाषिक सत्ता है, स्वप्न पदार्थ प्रातिभाषिक सत्ता है, और वो जो रस्सी है ना उसकी सत्ता व्यावहारिक सत्ता है। शुक्ति की सत्ता व्यावहारिक सत्ता है, आपके मन की सत्ता, जिस मन को अधिष्ठान बनाकर आधार बनाकर इतना लंबा चौड़ा स्वप्न आपने देखा, उस मन की सत्ता क्या है? मन की सत्ता व्यवहारिक है। इसलिए अधिष्ठान का विवर्थ का अर्थ ये है, विवर्थ का अर्थ ये है जहां पर विपरीत सत्ता, विभिन्न सत्ता हो और अन्यथा रूप हो उसको विवर्त बोलते हैं। समान सत्ता और अन्यथा रूप परिणाम, विपरीत सत्ता और अन्यथा रूप विवर्त। समझ गए? दो रज्जु में सर्प दिखाई दिया, रज्जु की सत्ता व्यवहारिक सत्ता है और सर्प की सत्ता प्रातिभाषिक सत्ता, तो इसलिए विपरीत सत्ता तत्व आ गई। ये दोनों में विपरीत सत्ताएं हुई और अन्यथा रूप है। जो रज्जु का रूप है वो सांप का रूप नहीं है, सर्प का रूप अलग है और आपके रस्सी का रूप अलग है। इसलिए विपरीत सत्ता और जहां विपरीत स्वभाव हो, विपरीत स्वरूप हो, विपरीत गुणधर्म हो उसको विवर्त बोलते हैं, और जहां समान सत्ता हो और विपरीत स्वभाव गुण हो उसको परिणाम बोलते हैं। जैसे दूध और दही, मिट्टी और घड़ा, ये दूध का जो दूध की सत्ता व्यवहारिक है और दही की भी सत्ता व्यवहारिक है। इसलिए आप जब बोलते हो ना, ये नहीं बोलते कि दूध में दही अध्यस्त है, ऐसा बोल सकते हैं क्या? नहीं बोल सकते। आप ऐसा बोल सकते हैं कि मिट्टी में घड़ा अध्यस्त है, ऐसा बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। लेकिन आप ये बोल सकते हैं कि नहीं, रज्जु में सर्प अध्यस्त है। ये दो चीजें हैं, ये विवर्त। इसलिए रज्जु का सर्प विवर्त है और दूध का दही परिणाम है, मिट्टी का घड़ा परिणाम है और शुक्ति का रजत विवर्त। और जो ये दुनिया जो है ना, ये दुनिया परमात्मा का विवर्त है और अविद्या का परिणाम है। यहां पर यही तो बात कह रहे हैं, हम जैसा देख रहे हैं वैसा नहीं है, हम तो ऐसा ही देख रहे हैं, रज्जु में सांप देख रहे हैं, है ना? तो रज्जु में सांप देख रहे हैं, तो देखने ये देख रहे वो सत्य हैं क्या? सत्य हैं। जो दृष्टि है हमारी वो असत्य है, लेकिन असत्य बुद्धि कब मालूम पड़ती है? जब अधिष्ठान का बोध होता है। अच्छा, स्वप्न आपको स्वप्न कब मालूम पड़ता है? स्वप्न स्वप्न में स्वप्न मालूम पड़ता है कि जागृति में आने के बाद मालूम पड़ता है? जागृति में आने के बाद मालूम पड़ता है। ओहो, जग गए तब मालूम पड़ेगा, ओहो ये तो स्वप्न है। तो यहां पर यही बात बोल रहे, ऊर्ध्व मूल मद शाख, ये ऊर्ध्वम, ये जो ऊर्ध्व ऊर्ध्वम अधिष्ठानम, अधिष्ठान तत्व ब्रह्म तत्व, ये संसार का अधिष्ठान तत्व जो है ब्रह्म है और उस ब्रह्म का विवर्त है। ये सारी जो दुनिया है उस परमात्मा का विवर्त है, विवर्त है। विवर्त माने जैसा दिखाई दे रहा वैसा नहीं है, जो दिखाई दे रहा है ये भ्रांति रूप है और उसका मूल जो तत्व है वो ब्रह्म तत्व है। शेष विषय हम कल करेंगे, बड़ा सुंदर विषय है। ओम ह्रीम नमः शिवाय, ओम ह्रीम नमः शिवाय, शिवाय,
ओम ह्रीम नमः 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 शिवाय,
ॐ
ह्रीं नमः शिवाय,
ॐ ह्रीं नमः शिवाय,
ॐ ह्रीं नमः शिवाय,
ॐ ह्रीं नमः शिवाय,
ॐ ह्रीं
शिवाय
ॐ ह्रीं नमः 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 शिवाय शिवाय
ॐ ह्रीं नमः 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 शिवाय ॐ ह्रीं नमः शिवाय
ॐ ह्रीं नमः शिवाय
ॐ ह्रीं नमः शिवाय
ॐ ह्रीं नमः शिवाय
ॐ ह्रीं नमः शिवाय
ॐ ह्रीं नमः शिवाय
ॐ ह्रीं नमः शिवाय ॐ ह्रीं नमः शिवाय
ॐ ह्रीं नमः शिवाय
ॐ ह्रीं नमः शिवाय
ॐ ह्रीं नमः शिवाय
ॐ ह्रीं नमः शिवाय
ॐ ह्रीं नमः शिवाय
ॐ ह्रीं नमः शिवाय
ॐ ह्रीं नमः शिवाय